हरे कृष्णा। दिस क्लास ऑन श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 15 श्लोक नंबर 23 गिवन एट इस्कॉन फरीदाबाद ऑन 22 दिसंबर 2016 बाय माई सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
Oh,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हमारी आज का अध्याय 15 का श्लोक संख्या 23 स्कंद 3 यन्ना व्रजन्ति अगभिदो रचनानुवाद चश्रणवन्ति ये अन्या विषयकु कथामतिघ्नी। यस्तु श्रुता हत भगे निर्भिरात सारा तान्तान् क्षिपन्ते अशरणेषु तं सुहन्ता। यन्ना व्रजन्ते अघोभिदो रचनानुवाद च श्रवन्ति अन्या विषयको कथामतिघ्ने। यास्तु श्रुता हत भगे निर्भिरात सारा स्तान्तान् क्षिपन्ति अशरणेषु तां सुहन्ता। यन्ना व्रजन्ते अगभिदो रचनानुवादा श्रवन्ति अन्या विषयको कथामतघ्ने। यास्तु श्रुता हत भगे निर्भयात सारा स्तान् स्तान् क्षिपन्ति अशरणेषु तं सुहन्ता।
यन्ना व्रजन्त्यघमिदो रचनानुवादा
यन्ना अर्जन्तात् विदोरचनानुवादात् श्रवन्ति ये अन्या विषया कुकथामति यास्तु श्रुता तु भयग्निर्भेयात् सारा स्तान्तान् क्षिपन्ते अशरणेषु तमस्तु हन्त यन्ना व्रजन्ते यद्विदो रचनानुवादा श्रवन्ति अन्या विषया कुकथामतिग्ने यास्तु श्रुता हत भगैर्निभिरात् सारा तांस्तान् क्षिपन्ते अशरणेषु तमासु हन्त। इसका अनुवाद करेंगे। ये अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषय में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। तात्पर्य बाय दिव्यांगज श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी हैं, जो आध्यात्मिक जगत के चित्र वैचित्र को नहीं समझ पाते। वे वैकुंठ लोकों के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा विचित्र अवश्य ही भौतिक होगा। ऐसे निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतः शून्य है, अथवा दूसरे शब्दों में वहाँ कोई चित्र वैचित्र नहीं है। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा मतिघ्नि अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है। यहाँ पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई है, क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में जो चित्र वैचित्र पूर्ण है सोच सकते हैं और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र कैसे हो सकता है? इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है अर्थ यह नहीं है कि यहाँ दिव्य चित्र वैचित्र नहीं है। भागवत में और विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं, वे भाग्यवान हैं। वैकुंठ लोगों का चित्र विचित्र भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है, किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकल्पों को समझने का प्रयास करने के बजाय राजनीतिक तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। वे इस जगत की, जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेक अनेक सम्मेलनों, गोष्ठियों, चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते, वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदामयं ददाति स्वप्तकान्तिकम्।
वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर अध्याय है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तो भगवान के साम्राज्य के बारे में अधिकतर लोग रुचि नहीं दिखाते हैं। लोग रुचि दिखाते हैं कि 500,000 का नोट बंद हो गया है तो अभी कौन सा नोट बंद होगा कौन सा आएगा। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं राजनीतिक कार्यों में रुचि दिखाते हैं परंतु आध्यात्मिक कार्यों के प्रति उनका कोई रुझान नहीं होता है। तो इस श्लोक के अंदर इस अध्याय में बताया गया है कि मैत्रेय मुनि विदुर जी को ईश्वर के साम्राज्य यानी वैकुंठ धाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और इस श्लोक से पहले ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान के धाम के बारे में बताना शुरू किया है। तो एक कथा में दो कथा चल रही हैं। मतलब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया वैकुंठ धाम के बारे में कि भगवान का धाम कैसा है, चिन्मय है, शाश्वत है और नष्ट नहीं होता है। भगवान का धाम सदा विराजमान रहता है। और भगवान के धाम में भगवान के धाम कई हैं, अनंत वैकुंठ हैं। उनके अंदर से सबसे प्रमुख है गोलोक वृंदावन धाम जो कि भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं इसमें अगर हम सरल भाषा में समझें कि हर एक व्यक्ति का अंतिम गंतव्य वैकुंठ धाम, क्योंकि हम वैकुंठ से ही ये आत्मा है इस धराधाम पे आई है। तो इन सबका कर्तव्य क्या है, वापस भगवान की सेवा में लौटना। तो अगर हम उस जगह के बारे में सोचेंगे नहीं जहां हमें जाना है तो हमारी तैयारी क्या होगी। जैसे मान लीजिए आपको जाना हो अभी मायापुर, तो जाने के लिए तैयारी करते हैं, सबसे सस्ता एरोप्लेन का टिकट कौन सा है, सबसे सस्ता रिजर्वेशन ट्रेवल रेलवे टिकट कौन सा है, और सारे अरेंजमेंट करके फिर व्यवस्था करते हैं कहाँ रुकेंगे, फिर कितने दिन के लिए रुकेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, वो सारा अरेंजमेंट करते हैं। फिर भक्ति की बात आती है, फिर भजन की बात आती है, पहले अरेंजमेंट करते हैं। तो आप सोचिए जो वैकुंठ धाम जहाँ पर जाने के बाद में वापस इस धरती पर नहीं आते, वहाँ जाने के लिए कोई तैयारी नहीं, कोई चर्चा नहीं। लोगों से पूछो जाकर, अभी बुक मैराथन चल रहा है, जाकर के बोलिए कि ये ले लीजिए भगवत गीता, तो कहते हैं पढ़ी है। तो मैंने पूछा पढ़ी है आपने, आपके घर पढ़ी है, तो वो बोल रहे थे रजौरी गार्डन में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे 2 दिन पहले, तो बोले कि हमारे घर पढ़ी है या आपने पढ़ी है, कह रहे नहीं नहीं हमारे घर पढ़ी है। कैसे पढ़ी है, कह रहे यथारूप, वैसे ही पढ़ी है जैसी लिखी हुई है प्रभुपाद जी ने। तो मैंने कहा अच्छा आपने पढ़ी है तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप कौन हैं। तो तो कहता है कौन है, मतलब इंसान है हम? तो मैंने कहा फिर तो आपने पढ़ी नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़े होते तो भगवान ने शुरुआत में ही बताया कि हम सब कौन है, शरीर नहीं है, आत्मा है। लेकिन आपने अभी शुरुआत ही नहीं करी और फिर कह रहे हैं पढ़ी है, तो फिर उनको गिल्टी लगा, फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ता हूँ, भगवद गीता दे दीजिए मुझे, तो उन्होंने लिया। तो इस तरह से लोग बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाते हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है। अभी तो इम्पोर्टेंट है राजनीतिक कार्यों को कैसे सफल बनाया जाए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं निर्विशेषवादी या शून्यवादी कितने अभागे हैं। निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान को निराकार बोलते हैं, कहते हैं भगवान में कोई विशेषता नहीं है, भगवान तो एक रोशनी के समान है, ऐसे लोग बोलते हैं। और शून्यवादी कहते हैं भगवान जो है वो कृष्ण रूप में एक मूर्तिमान बनकर आए थे अपने कर्तव्य करने, परंतु जब वो स्वयं भगवान होते हैं तो वो शून्य हो जाते हैं, जीरो। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उनके प्रणाम मंत्र में, निर्विशेषवादी शून्यवादी पाश्चात देश तारणे। तो श्रील प्रभुपाद जी आए हैं ऐसे निर्विशेषवादी शून्यवादियों को तारने के लिए, उनको समझाने के लिए कि भगवान जो है उनके धाम के बारे में जानो, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी तो हमारा यू टर्न शुरू होगा। अभी तो जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, यू टर्न कब मारेंगे वापस भगवत धाम जाने के लिए जहां से आए हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम भगवान के धाम से द्वेष करके इस धराधाम पे आए थे, परंतु सच्चाई ये है कि हम द्वेष करके नहीं आए थे, द्वेष तो होता ही नहीं है भगवान के धाम में, इच्छा थी, इच्छा के कारण। तो इच्छा के कारण भगवान ने एक जगत दिया हमको ये बना करके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और जब हमारी इच्छाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी रंच मात्र भी, तब तक वापस यू टर्न होने वाला नहीं है। और यू टर्न होना है तो इच्छाएं कैसी होनी चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम। पर बहुत मुश्किल है ये टारगेट, सुनना कहना बहुत सरल है परंतु होना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए कम से कम इतना कर सकते हैं कि भगवान के धाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुने, श्रवण करें। कथा सुनने मात्र से हमारा उसमें प्रेम उत्पन्न होगा और उससे हमारा शुद्धिकरण भी होता है। भगवद गीता के और 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणाम बोधयन्तम परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यां तुष्यन्ति चारमन्ति च। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं सही मायने में, वो ये नहीं पूछते एक दूसरे से, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और प्रभु जी घर में सब ठीक चल रहा है। उसके बाद चर्चाएं और हो जाती हैं, आजकल बड़ी परेशानी है, बैंक की लाइन है, ये है, परंतु भक्तों की चर्चा क्या होनी चाहिए, मत चित, जिनका चित मुझ में लगा हुआ है, मदगत प्राणम बोधयंतम परस्परम, सदा मेरे बारे में चर्चा करते हैं, कथयंतश्च माम नित्याम, नित्य मेरी कथा की चर्चा करते हैं, और उससे वो भी संतुष्ट होते हैं और मुझे भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो इसी तरह से भक्तों के लिए सबसे जरूरी है कि अगर हम चर्चा भी करें, तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि भगवान के चित्र विचित्र, भगवान का धाम कैसा होगा, बोलते हैं ये भगवत धाम का अब प्रतिबिंब है। अगर प्रतिबिंब में सब कुछ है तो क्या भगवान के धाम में सब कुछ नहीं होगा? वहां भी स्त्री पुरुष हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, वहां भी प्रेम है, लेकिन यहाँ उसका विकृत प्रतिबिंब है। वहां प्रेम है, यहाँ काम है। वहां इच्छा है भगवान की सेवा की, यहाँ इच्छा है अपनी सेवा की। वहां इच्छा है भगवान के नाम की, यहाँ इच्छा है अपने नाम की। तो इस तरह से ये दोनों ही अपोजिट है, विकृत प्रतिबिंब है। तो जिस दिन हम इस जगत में रहते रहते भगवान की सेवा की अभिलाषाएं उत्पन्न कर लेंगे, उस दिन भगवान हमारे लिए एंट्री गेट खोल देंगे। जैसे अर्जुन को भगवान ने गीता में कहा, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, कोई एंट्री एग्जिट पे कोई रोक टोक नहीं होगा, सीधा चले जाओगे अगर तुम युद्ध करोगे, अपने नियत स्वधर्म का पालन करोगे। ऐसे ही अगर कोई भक्त अपने स्वधर्म का पालन करे, भक्ति को प्रगाढ़ता से करने का दृढ़ निश्चय करे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वैकुंठ द्वारम अपावृतम, ऊपर आना जाना इजी हो जाएगा उसके लिए, खुला है दरबार, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन चतुर कुमार जो थे, आगे इसी अध्याय में वर्णन आएगा कि उनको रोक दिया गया था, भगवत धाम में एंट्री नहीं मिली उनको, 7वें गेट पे जय विजय ने रोक दिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो भक्त बाद में बने, अगर कोई व्यक्ति भक्त होगा तो उसके लिए कोई द्वार पे रुकेगा ही नहीं, उसके लिए सारा एंट्री हमेशा ओपन है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हम करें क्या। भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं 28वें श्लोक में, वेदेशु यज्ञेशु तपसु च एव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेत च आगम। भगवान कह रहे हैं वेदेशु, वेदों के अध्ययन से जो प्राप्त होता है, यज्ञेशु बड़े बड़े हवन यज्ञ करके जो प्राप्त होता है, तपसु जो तप करके प्राप्त होता है, दानेशु दान देकर जो प्राप्त होता है, लोग देते हैं ना दान चैरिटी, दानेशु यत् पुण्य फलम जो भी इससे पुण्य प्राप्त होते हैं, अत्यंति तत् सर्वम इदम विदित्वा जितना कुछ भी है, योगी परम स्थानम उपेत्य च आगम, वो भक्ति करने मात्र से अत्यंतता से प्राप्त हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है केवल एक मात्र भगवान का भजन, उसी से उसको यज्ञेशु दानेशु तपसु वेदेशु सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कुछ कृपा सब प्राप्त होती है, लेकिन भक्ति को दृढ़ता से करना चाहिए। तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसने वैकुंठ धाम के बारे में सुनने की इच्छा प्रकट कर ली, खाली वो भाग्यशाली है। उस भाग्य की बात तो छोड़ दो कि मिलेगा नहीं मिलेगा धाम, वो तो इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगदीश काम है, हमारी इच्छा ना हो, लेकिन अभी जहां है यहां पर कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति सही मार्ग पर है। जिस व्यक्ति में वैकुंठ के गुणों का अनुवादन सुनने के लिए क्या कर लिया, इच्छा उत्पन्न कर लिया है। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय पंचतत्व प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से बताते हैं कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही सबके ईश्वर हैं, इस बात पे श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। बड़े बड़े लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, बड़े बड़े दान यज्ञ करते हैं, रजोगुणी दान होते हैं, तमोगुणी दान है, भगवान बताते हैं सतोगुणी दान है। तो क्या अलग अलग प्रकार के दान में भी उनका क्या होता है, कोई ना कोई इच्छा जुड़ी होती है। मैंने भगवद गीता 1000 स्पॉन्सर करी तो मुझे इस्कॉन में बुलाया जाएगा, माला पहनाएंगे, तालियां बजाएंगे, फोटो खींचेगी, अखबार में डालेंगे मेरा नाम, तो ये रजोगुणी दान हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति दान दे रहा है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है, तो वो सही बारे में भगवान की सेवा में लग रहा है, सत्वगुणी दान कर रहा है। तो इस तरह से रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी सभी प्रकार के दान है। तो एक श्रद्धा एक ऐसा शब्द है जिससे भक्ति का प्रारंभ होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं आदो श्रद्धा ततः साधु संग, पहले क्या है श्रद्धा। लेकिन व्यक्ति क्या है, बहुत बड़े बड़े वेद अध्ययन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान के ऊपर बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है। ऐसे एक कथा में पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं कि श्री रंगम क्षेत्र में एक भक्त थे, कुछ गलती मुझे तो क्षमा करेगा, श्री रंगम क्षेत्र में एक भक्त थे जिनका नाम था पराशर भट्ट। वो एक गुफा में बैठ कर के अपना भजन कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा, उनके जो शिष्य थे, कि रोज एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो बहुत ही बड़ा वेद अध्ययन पाठी था, वो रोज वहां से गुजरता था और पराशर भट्ट उसको बस हरे कृष्णा कह के अपना चुप हो जाते थे। हाँ, लेकिन एक ब्राह्मण जो था भिखारी जो भिक्षा मांगता था, वो जो रंगनाथ मंदिर से भिक्षा मांग करके आता था उनकी गुफा के वहां से जहां वो जप कर रहे होते थे, तो उससे वो बड़े ही प्रेम पूर्वक उसका स्वागत करते थे, हरे कृष्णा कैसे हैं आप, आइए कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से व्यवहार करते। सारे शिष्य बड़े ही विचलित थे कि ये क्यों उस व्यक्ति से बात करते हैं जो व्यक्ति इनके योग्य नहीं है, एक बूढ़ा ब्राह्मण और वो सिर्फ भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करता है, और एक बड़ा आध्यात्मिक वेद अध्ययन करने वाला व्यक्ति रोज निकलता है, उसको सिर्फ नतमस्तक करते हैं और उसके बाद वो चला जाता है, उससे चर्चा नहीं करते हैं। तो शिष्यों ने जब ये प्रश्न किया तो पराशर भट्ट कहते हैं कि चिंता मत करो, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल ही प्राप्त होगा। तो उन्होंने जो वेद अध्ययन वाला व्यक्ति था उसको रोका और उससे पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए मैं जप करता हूं लेकिन मुझे अभी तक एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो वो घमंडी व्यक्ति जिसको वेद अध्ययन करके घमंड था ज्ञान का, वो बैठ गया, बोला बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा पर तत्व किम, पर तत्व किम, पर तत्व क्या है? जो परब धाम में रहते हैं भगवान वो कौन है? कहते हैं ना तत्व से भगवान को जानना चाहिए। पर तत्व किम, उन्होंने पूछा कौन है पर तत्व? तो वो व्यक्ति बोला कि इसका उत्तर तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे पुराण पढ़े। शिव पुराण में शिव का गुणगान होता है, विष्णु पुराण में विष्णु का गुणगान होता है, और भागवत पुराण में कृष्ण का गुणगान होता है। तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि परतत्व किम, कौन है परतत्व? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, देवी पुराण है, उप पुराण उसमें देवी का वर्णन है, कौन है सही मायने में परतत्व? मैं जान नहीं पा रहा हूं परतत्व किम, मुझे भी नहीं पता। वो चले गए। उसके बाद में वो ब्राह्मण जो था वो जा रहा था, वो भी अपना भिक्षा मांग करके आया था, लेकिन उसका आज भिक्षा का जो पात्र था खाली था, तो वो भिक्षामदेही कहता हुआ जा रहा था। तो उन्होंने बुलाया और कहा कि आप मुझसे भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। कहा हाँ दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ खीर बनाई थी तो उनके पात्र में डाल दिए और उस पात्र को लेकर वो बैठ गए। उन्होंने कहा मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। कहा नहीं नहीं, लेकिन फिर भी आप रोज भगवान के मंदिर जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता होगा जिसके कारण आप श्रीरंगम में जाते हैं, रोज श्री रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं। कहा हाँ। कहा ठीक है, तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, पर तत्व किम, पर तत्व क्या है? तो उन्होंने जब पूछा तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो उठाया अपने पात्र और ऐसे करके दीवार पे फेंक दिया और कहा उस व्यक्ति से चर्चा ही क्या करूं जो रंगनाथ जी के यहां पर रहता है, रंगनाथ जी का प्रसाद खाता है, रंगनाथ जी की कृपा से उसका जीवन चल रहा है, और अब वो मुझसे प्रश्न पूछ रहा है कि परतत्व किम। मैं तो सोचता था तुम बड़े समझदार व्यक्ति हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम कि परतत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और वो कहेगा वो पात्र को फेंक कर चला गया। तो शिष्य समझ गए कि ये व्यक्ति इसीलिए पराशर भद्र जो थे वो रोज उसको प्रणाम करते थे, उससे चर्चा करते थे, क्योंकि वो जानते थे उसकी श्रद्धा अटूट है। और बड़े अध्ययन करने वाले व्यक्ति की श्रद्धा अटूट नहीं, श्रद्धा उसकी विचलित हो जाती है। ज्यादा ज्यादा इधर उधर पुराण ये वो पढ़ेंगे तो क्या होता है, कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा कोमल है। हमारी श्रद्धा प्रभुपाद जी की तरह नहीं है कि सारे अध्ययन करके, या फिर प्रभु जी की तरह नहीं है हमारी श्रद्धा कि सारे अध्ययन करके हम सार भक्तों को प्रकट कर सकें। हम तो पढ़ेंगे तो हम तो इधर उधर ट्रेवल, यहाँ ट्रैक बदल जाती है, ट्रेन कहीं और चले जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ जो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं उन्हीं का अध्ययन हमें करना चाहिए, या फिर पारंपरिक हमारे जो इस्कॉन के ग्रंथ है। तो इस तरह से व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है भगवान की, उसका श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसको भगवान की विशेष कृपा मिलती है। ब्रह्म वैवत पुराण में भगवान के वैकुंठ धाम जैसा इस अध्याय इस श्लोक में चल रहा है, वर्णन आता है कि एक बार भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं के आग्रह पर, 33 करोड़ देवी देवता है, उनके आग्रह पर उनको कहा कि आप सबका बड़ी इच्छा होती है कि सब क्या करें, मेरे धाम को देखें, क्योंकि सबकी सेवाएं हैं। कोई स्वर्ग लोक का राजा है इंद्र, वायु हैं कहीं पर कोई वरुण देव है, सब अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्त हैं, परंतु सब चाहते हैं कि हम भी भगवान का वैकुंठ धाम देखें। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर वैकुंठ देखना चाहते हो तो थोड़ी देर का क्या कहते हैं उसको, ब्रेक ले लो, और उस ब्रेक के अंदर मैं तुमको अपने वैकुंठ धाम का दर्शन कराऊंगा। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर जाते हैं, तो इंद्र भी उसमें, क्योंकि इंद्र राजा है देवताओं के, तो उसके आगे अग्रणी देवता बनकर चल रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो सारे लोगों से होते हुए ऊपर पहुंचते हैं, और विरजा नदी को पार करते ही एक चिन्मय धाम, इतना सुंदर, उसमें तेज है, इतनी सारी लाइटें कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने हेलोजन, कितने सूर्य लगाए गए हों तब इतनी लाइट है, लेकिन देख रहे हैं तो एक भी सूर्य नजर नहीं आ रहा, एक भी लाइट नजर नहीं आ रही, पर तेज बहुत है उस धाम के अंदर, विरजा नदी को पार करते ही। और फिर जब वहां पहुंचते हैं तो अभी वैकुंठ में घुसे भी नहीं है, तो इंद्र के मन में एक इच्छा प्रकट होती है। वो कहता है कि जिस अमरावती स्वर्ग का मैं राजा हूं, अमरावती, उस स्वर्ग का स्थान यहां के स्थान से कितना गया गुजरा है। वैकुंठ धाम के बाहर, जैसे हम मंदिर के बाहर चप्पल उतारते हैं तो वहां सबसे ज्यादा मिट्टी होती है, तो वैकुंठ धाम के बाहर जहां चप्पल उतार के सभी लोग अंदर जा रहे हैं अपनी पादुकाएं उतार के, वो स्थान जो है उससे भी कहीं गई गुजरी है मेरी अमरावती, जिसके लिए मैं बड़ा गर्वित होता हूं कि मैं देवताओं का राजा हूं और मुझे स्वर्ग प्राप्त हो गया है। और कई लोग अश्वमेघ यज्ञ करते हैं स्वर्ग प्राप्त हो जाए, 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पर स्वर्ग का राजा बनाया जाता है। तो इस तरह से आप सोचिए कि वैकुंठ इतना इतना विशाल वर्णन करने योग्य है, और भौतिक संसार के लोग कोई रुचि भी नहीं दिखाते इसको जानने के लिए। गीता में भगवान कहते हैं, ना तद बसायत सूर्य ना शशांको ना पावक यद गत्वा न निर्वन्तते तद धामम परम मम। वो धाम मेरा है जहां ना तद बसायत सूर्य हो, ना सूर्य की आवश्यकता है, ना शशांको ना पावक, ना मुझे चंद्रमा की आवश्यकता है। वहां पर तो मेरे ही तेज से रोशनी प्रकट होती है, और वहां जाने के बाद में इस धाम में वापस इस पृथ्वी पे इस भौतिक संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। तो सोचिए कितना बड़ा एक वीजा मिला हुआ है, परमानेंट वीजा होता है ना, क्या कहते हैं, ग्रीन कार्ड मिल जाना, अमेरिका जाने के बाद पुनः इंडिया नहीं आना पड़ेगा। तो वो वीजा मिला हुआ है अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर ले, लेकिन भक्ति को छोड़कर लोग पता नहीं क्या क्या यज्ञ अनुष्ठान कर्म कांड में फंसे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, एक बद्ध अवस्था में है और एक मुक्त अवस्था में है। बद्ध अवस्था में जीव ना तो जानता है कि भगवत धाम क्या है और ना ही जानना चाहता है, लेकिन मुक्त अवस्था में जीव कम से कम जीते जी जानने का प्रयास करे तो सही मायने में उसने सही मार्ग का अनुगमन किया है। लेकिन कुछ लोगों को बद्ध अवस्था में इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की इंद्रियों में आसक्त हैं, जैसे खाने का वेग, बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है लोगों, खाने का वेग रोका नहीं जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाए खाते रहते हैं। बोलते हैं ना उसमें आयुर्वेदिक शास्त्र में बोलते हैं, एक बार खाते हैं वो योगी होते हैं, दो बार खाते हैं वो भोगी होते हैं, तीन बार खाते हैं वो रोगी होते हैं, ऐसा वो आयुर्वेद शास्त्र बोलता है। तो ज्यादा ज्यादा खाते रहते हैं वो रोगी इसलिए बनते हैं क्योंकि प्रसाद नहीं खाते हैं। लेकिन हमें प्रसाद को प्रसाद के रूप में अगर ग्रहण करें वो अलग चीज है। तो खाने का वेग रोका नहीं जाता, कुछ भी मिल जाए सीधा गप अंदर जाना चाहिए। सोने का वेग, इतना सोने का लोगों को इंद्रिय तृप्ति है, उससे आसक्त हैं बद्ध अवस्था में, अलग अलग प्रकार के वेग इंद्रियां खींच रही हैं, सोते ही रहते हैं और थोड़ा सा सेवा करेंगे उसके बाद बोलते हैं अभी थक गया रेस्ट चाहिए। एक व्यक्ति है जॉब में, जब मैं था तो उस समय हमारे साथ में जॉब करते थे, वो शनिवार शुक्रवार को हमारा ऑफिस बंद होता था और मंडे को दोबारा से ऑन होता था, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। तो एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था, वो भक्त तो नहीं थे भौतिक थे, कि मैं ना अभी जाकर सोऊंगा, बहुत थक गया हूं 5 दिन काम करके। मैंने कहा अच्छा कब उठोगे, कह रहा सोमवार को सुबह, मतलब ना खाऊंगा ना पीऊंगा सिर्फ सोऊंगा। हाँ सोचिए आप जरा, इतना कोई सो सकता है, कितना वेग है सोने का। और बोलने का वेग, इतना बोलते हैं लोग, हर टाइम बोलते ही रहते हैं। मौन व्रत धारण करें, 15 मिनट के लिए बोला जाता है ना, जैसे कभी कोई शोक सभा हो बोले 5 मिनट का मौन धारण, उसमें भी इशारेबाजी करते रहेंगे, बिल्कुल मौन रह ही नहीं सकता, बोलने का वेग इतना है। एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनकी पत्नी को बहुत ज्यादा बोलने का वेग है, हर टाइम बोलती ही रहती है। एक फोन पे तकरीबन 1 घंटा बात करती है तब फोन रखती है। तो एक दिन उन्होंने 1/2 घंटे बाद ही फोन रख दिया, तो उनके पति ने पूछा कि आपने 1/2 घंटे बाद ही आज फोन रख दिया, क्या हो गया ऐसा, आपने कोई व्रत लिया है? करे नहीं, रॉन्ग नंबर लग गया था। तब तो इतना बोलने का वेग है, रॉन्ग नंबर पे भी 1/2 घंटा बोल सकते हैं। तो कुछ भी कहीं पर भी लोग कहीं कोई वेग रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक स्थिति है हमारी, इन वेगों को हम कैसे नियंत्रित करेंगे और बिना कथा श्रवण के भक्ति मार्ग में लगे हुए। भागवतम के 11वें स्कंद में अनेकों प्रकार की चीजों का वर्णन है जो हमें संसार में बांधती हैं। दत्तात्रेय जी की कथा में, अवधूत कथा में आता है, वो कहते हैं जिव्या अति प्रमथिन्या जनो रस विमोहितः मृत्युं मृच्छति असत बुद्धि मीनस्तु बढ़िशे यथा। वो कहते हैं मीनस्तु, मछली जिस प्रकार से जीव के वेग के कारण क्या होता है कि बस एक मछुआरा आकर के इतना सा तिनका लगाता है बस खाने का उसके लिए, और वापस उसे जल में जैसे ही अब डालता है वो कांटे की तरफ दौड़ी चली आती है क्या खाने के लिए, मीन मछली जिह्वा के वेग को ना रोकने के कारण। अगर वो सोचे कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा नीचे तालाब में खाने के लिए, मच्छर आदि बहुत होते हैं वहां पर, लेकिन मैं नहीं, मैं क्या खाना चाहती हूँ, मैं बस ये जो ऊपर से अभी ताजा आया है ना इसी को खाऊंगी, और उस वेग के कारण वो कांटा उसके मुंह में फंसता है और वो मारी जाती है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि वो एक छोटा सा दाना लगाते हैं और फिर पॉन्ड में फेंकते हैं और फिर बाद में मछली को निकाल कर बाहर किनारे पे कांटे से ऐसे निकाल कर छोड़ देते हैं, और वो पानी से बाहर आ गई है और तड़प रही है और काफी ऊंचा, इतना ऊंचा जंप कर लेती इतनी बड़ी मछली, और फिर वो जंप करने के बाद में कूदने के बाद में अपने प्राणों को त्याग देती है, मर जाती है वो। तो सोचिए इतने से एक टुकड़े के पीछे वो कहाँ पहुंच जाती है, अपने मृत्यु लोक को। तो हम सोचें कि हम अगर अपने किस वेगों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहाँ फंस जाएंगे। हम देखें तो सारा का सारा संसार जिह्वा अति प्रमथ थी ना, जिह्वा के कारण ही सारी दिक्कत बद अवस्था की है। लोग बोलते हैं कि अरे जिह्वा से कैसे बद अवस्था की हो सकती है। देखें तो मैं कंपैरिजन कर रहा था कभी एक बार कि नॉर्मल दुकान पर भौतिक संसार के लोग चाय पीते हैं तो वो 5 से 10 रुपए की चाय आती है, लेकिन जब वो अपने समाज में अपनी अपनी ईगो के कारण, अहंकार के कारण, लोगों को दिखावे के कारण दिखाना चाहते हैं मैं कुछ हूँ, तो कहाँ चाय पीते हैं, जाके बरिस्ता में कॉफी कैफे डे में, वहाँ चाय आती है 150 रुपए की, वही चाय है। आप देखिए कि, और अभी कोई भक्त बता रहे थे वो अमेरिका से आए थे कि हिंदुस्तान में हल्दी का दूध व्यक्ति पीता नहीं है, दूध के अंदर हल्दी डाल के बोलो तो दर्द में पिएगा, चोट में पिएगा, नॉर्मली नहीं पीता है, और अगर पिएगा भी तो कितना खर्चा होगा, 15 रुपए 20 रुपए, और अमेरिका में इस समय $6 लिया जा रहा है, $6 मतलब 400 रुपए के करीब $6 लेते हैं, और उसका नाम है टर्मरिक लैटे, टर्मरिक लैटे, और लोग हल्दी का दूध और इंटरेस्ट से पीते हैं, बड़ा प्रेफर्ड ड्रिंक्स में आता है वो, बहुत ज्यादा चर्चित है कि ये पीने योग्य है। तो जिह्वा के कारण अभी हिंदुस्तान में भी वही सारी प्रक्रिया लोग पालन कर रहे हैं, है ना। सलाद खाने जाएंगे घर में तो खीरा टमाटर कितने का आता है, थोड़ा सा, और फ्री में भी मिलता है कई जगह तो, प्रसाद में फ्री में मिल जाएगा, उसका तो पैसा भी नहीं लेते हैं, लेकिन आप चले जाइए 5-स्टार होटल में या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में तो वहां पर वो बोलते हैं फ्रेश ऑर्गेनिक क्यूकेम्बर टोमेटो सालसा, देखा खीरा टमाटर, इतना सा 2 टुकड़े डाल दिए लाकर के, और कॉस्ट उसकी कितनी है, 250 रुपए का छोटा सा प्लेट। तो लोग जिह्वा के वेग, और वो जिह्वा के कारण फिर वो अहंकार, है ना, ईगो इस संसार में दिखाना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं, और इसीलिए वो फंसते चले जा रहे हैं। तो हम कम से कम जो भक्त हैं, जो अपने को बोलते हैं ना सुबह प्रार्थना में, जो अपने को वैष्णव समझता हो, तो मुझे लगता है ये तो समझना बड़ा मुश्किल है, हम तो नहीं समझते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने को अगर भक्त समझता हो तो उस व्यक्ति को कम से कम इस मार्ग का अनुगमन करना चाहिए, जिह्वा के वेग को रोकें। इस जिह्वा से सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद के रूप में, ये नहीं होना चाहिए वो मीठा वाला ही दे दो मुझको महाप्रसाद, या फिर यही वाला दे दो, जो कुछ भी है सब भगवान का है, जो मिल जाए ठीक है, और जप करना चाहिए, और इससे कथा भगवान की बोलनी चाहिए, भगवान का प्रचार करना चाहिए, है ना, अन्यथा तो ये जीवन जो है बेकार है। एक इस तरह से व्यक्ति वर्णन करते हैं, तो हमें जब तक भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी कि भगवान जो है वो सभी भक्तों के रक्षक हैं, तब तक हम उनके बारे में सुनेंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर आप भक्ति मार्ग में शुरू करते हैं तो आदो श्रद्धा, उस श्रद्धा को बरकरार रखिए कि वैकुंठ नाम का कोई जगत है, ये श्रद्धा तो हो। अगर हम सोचेंगे नहीं नहीं मर गए उसके बाद किसने देखा कहाँ जाने वाले हैं, कोई सुनेगा वैकुंठ के बारे में, तो इस तरह से लोगों को बोलो, बोले जी किसने देखा वैकुंठ धाम, कोई आया है क्या? बोले नहीं, वहां जाके तो वापस नहीं आते। बोले जब आते नहीं तो किसने बताया वैकुंठ धाम है? तो कैसे बताएं उनको कि भाई ये श्रद्धा शास्त्र भगवान के शक्ति आवेश अवतार स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा रचित है। स्वयं भगवान भगवान बोल रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, लोग सुनने को तैयार नहीं है कि भगवान का धाम ब्रह्मा जी इसमें वर्णन कर रहे हैं और अपनी एक ब्रह्म संहिता में लिखते हैं। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रसेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तम अहम् भजामि। वो लिखते हैं कि वहां पर सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं, सहस्त्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। चिंतामणि रत्नों से बना हुआ वहां का फ्लोर है, सोचो आप, और अगरू जल रही है इतनी वहां पर, यहां यहां तक जैसे बादल होता है ना, कमर कमर तक अगरू खुशबू है और धुआं है बादलों जैसा, ऐसा धाम सुंदर। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, और वहां पे कल्प वृक्ष है, इच्छा करो और खाने को मिल जाए, कुकिंग भी नहीं करना पड़ता, टेंशन नहीं है सर्दी में कैसे बनाए गर्मी में कैसे बनाए, सिर्फ इच्छा करो और प्लेट फुल, पेट भी फुल प्लेट भी फुल, तो पूरा भर जाता है। कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्, सुरभि गाय है वहां पर, ऐसा दूध नहीं देती है कि 6 लीटर देने के बाद में फिर लैक्टोज इंजेक्शन लगाना पड़ता है, नहीं, वो नियंत्रित हमेशा जितना चाहिए उतना दूध आदि प्रदान कर सकती हैं। कल्प वृक्ष हैं, सुरभि गाय हैं, चिंतामणि रत्नों का बना हुआ है, सहस्त्र लक्ष्मियां हैं वहां पर, ऐसे गोविंद भगवान जो है उनको ब्रह्मा जी भजन करते हैं, लेकिन हम लोग उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं। जैसे एक बार एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, वो जंगलों में आर्मी के कैंप में था, सोल्जर जिसे कहते हैं ना, सैनिक, तो सैनिक था वो बॉर्डर पे लड़ने के लिए गया और वहां पर उनके अस्त्र शस्त्र सभी समाप्त हो गए, अभी कम पड़ गया उसके पास कि कैसे लड़ाई करें कैसे जीतें, तो सामने वाली सेना ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया, अब ये सब भागने लगे, इधर भाग उधर भाग इधर भाग, कहां भागे, भागते भागते सभी भाग रहे थे कि हमारे तो सारी बारूद असला बंदूक सब नष्ट हो गया, अभी हम कैसे बचें, तो सब अपनी जान बचा के भाग रहे थे। उसमें से एक सैनिक भागते भागते अपनी टुकड़ी से अलग हो गया और सबने देखा, होता है ना ग्रुप में तो समझ नहीं आता लेकिन कोई अकेला भागे तो नजर में आता है, वो भागा तो सब बोले वो उसके पीछे भागो, तो सारे के सारी दुश्मन सेना उनके पीछे भागी। अब ये भागता जा रहा है भागता जा रहा है जंगल में, और ये व्यक्ति भगवान पे कभी भरोसा नहीं किया, लेकिन एक बार इसने चर्च में सुन लिया था भगवान के विशेष गुणों के बारे में कि ऐसे ऐसे हैं भगवान, जबकि वहां पर तो इतने विस्तार में वर्णन भी नहीं है जैसा कि वैष्णविज्म में वर्णन होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत सुना तो उसको पता था कि ये गॉड नाम की कोई चीज है। अभी वो जब भागता जा रहा है भागता जा रहा है, अपने को बड़ा अकेला महसूस कर रहा है, भागते भागते गुफा में घुस गया, गुफा में घुसा तो वहां जाके कहने लगा कि वो गॉड, ओ गॉड नहीं, वो गॉड जिसके बारे में मैंने सुना था, अगर वो है तो आज मेरी रक्षा करे, और अगर उसने मेरी रक्षा करी तो मैं आज बोलता हूं कि मैं आजीवन ये सेना का काम छोड़ करके सिर्फ चर्च में भगवान की सेवा करूंगा, ऐसा उसने सोचा। सोचिए अभी क्या हुआ, जैसे उसने ये प्रार्थना करी बड़े दिल से, एकदम मृत्यु निकट है ना, तो ऐसे समय में दुख में स्मरण सब करें सुख में करें ना कोई, दुख था बहुत कष्ट था, सोचा मृत्यु आ गई, तुरंत भगवान को पुकारा, पुकारा तो एक गुफा के द्वार के ऊपर एक मकड़ी आ गई और मकड़ी ने आकर के पूरा जाल बुनना शुरू किया तभी, और जब तक वो सेना ढूंढते ढूंढते उसके पैरों के निशान ढूंढते ढूंढते वहां आए, तब तक पूरा जाल गेट के ऊपर बन गया था, गुफा के द्वार के ऊपर। अभी सभी सैनिक सोचने लगे दुश्मन सेना के कि यही तो गया होगा इस गुफा के अंदर, तो उसमें से एक समझदार बोला कि अगर जाता तो ये मकड़ी का जाला टूटा होता, ये मकड़ी का जाल लगा है इसका मतलब इसके अंदर कोई नहीं है, अपना समय खराब मत करो निकल जाएगा ढूंढो, वो आगे भाग गया है। और ये अंदर बैठा था, अंदर बैठे बैठे इसने देखा वो निकल गए, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन तक कोई नहीं आया, तो इसने फिर उसको तोड़ा, बाहर निकला और फिर आकर चर्च में आके जो वहाँ के फादर थे पादरी उनको आके प्रणाम किया और कहा कि हाँ अब मैं भी भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहता हूँ। तो सोचिए आप जरा, उसने कहा अपने उसने जब वो पादरी बना बाद में तो उसने बुक्स लिखी काफी सारी, उन पुस्तकों में वो वर्णन करता है कि मेरी जीवन की रक्षा ऐसे समय पर जब कोई सहारा नहीं था, सिर्फ एकमात्र भगवान थे जो मेरी रक्षा कर सके। तो सोचिए जब वो भगवान को जानता भी नहीं था भगवान कौन है, तो भगवान तो रक्षा करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास अगर होगा तभी तो भगवान रक्षा करेंगे, उसका पूर्ण विश्वास था। तो हमें भगवान के धाम में विश्वास होना चाहिए, भगवान के कि भगवान है और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु रामानंद राय के संवाद में आता है, रामानंद राय महाप्रभु भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु उनको स्वयं स्थापित करते हैं। अनंत वैकुंठ अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड इहा सबर आधार। अनंत वैकुंठ है और अनंत उनके अवतार है, एक वैकुंठ नहीं है अनंत वैकुंठ। अब ये महाप्रभु सामने सुन रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु के सामने बैठ के रामानंद राय बोल रहे हैं, तो क्या हमें विश्वास नहीं होना चाहिए कि यह वैकुंठ अनंत है? लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, हमने तो सुना है 24 वैकुंठ है। भगवान ने सरल कर दिया वेद व्यास जी ने कि भाई ठीक है 24 वैकुंठों को सुन लो, परंतु यहां वर्णन है अनंत वैकुंठ अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड इहा सबारा आधार। कौन है? भगवान श्री कृष्ण उन सारे वैकुंठों के आधार हैं, ये श्रद्धा है। आगे कहते हैं सचिदानंद तनु व्रजेंद्र नंदन सर्व ऐश्वर्य सर्व शक्ति सर्व रस पूर्ण। जो ऐसे भगवान कृष्ण है वो है कैसे? सचिदानंद तनु व्रजेंद्र नंदन, व्रजेंद्र नंदन है कौन? सचिदानंद तनु। उनका शरीर कैसा है? सचित और आनंद का, हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है। कई लोग यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भगवान तो आए थे चले गए, अभी देश की रक्षा कौन कर रहा है? अब भगवान तो चले गए, अभी कौन रक्षा करेगा? भगवान जाते नहीं है, उनकी प्रकट लीला और अप्रकट लीला होती है, भगवान वहीं रहते हैं, आज भी वृंदावन में है। लेकिन वो भक्तों को वही दर्शन देते हैं जिनके हृदय में प्रेम है, जो भगवान को श्रद्धा से भजते हैं। लेकिन अगर वैकुंठ धाम के बारे में उसके चित्र विचित्र के बारे में श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम क्या सुनेंगे और क्या उस मार्ग पर चलेंगे? तो इस तरह से हमें मानना चाहिए कि भगवान का शरीर सचित आनंद का बना हुआ है और भगवान के पास सभी चीजों का ज्ञान है। भगवान कोई निराकार नहीं है, भगवान कोई शून्यवादी नहीं है, भगवान कौन है? सचित आनंद तनु व्रजेंद्र नंदन भगवान है। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी से कई लोग पूछा करते थे कि प्रभुपाद जी आप चाहते हैं इस पूरे विश्व के लोग क्या बोले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सभी लोग अगर भजन करने लग जाएंगे तो काम धंधा कैसे होगा? पॉलिटिक्स कौन चलाएगा, स्कूल कौन चलाएगा, घर कौन चलाएगा, कार कौन चलाएगा, सभी भजन करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर इस भौतिक जगत का क्या होगा? लोगों ने पूछा तो प्रभुपाद जी ने कहा फिर भौतिक जगत वैकुंठ जगत बन जाएगा, है ना? अगर सभी लोग यहां जप करेंगे तो भौतिक जगत क्या बन जाएगा? वैकुंठ जगत बन जाएगा, अनंत वैकुंठों में से एक और वैकुंठ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें ये भौतिक जगत। वहां वैकुंठ धाम में निरंतर भगवान के नामों का जप चल रहा है, जप माला भी नहीं होती है, मुख में निरंतर भगवान का नाम चलता रहता है, सेवा चलती रहती है भगवान का नाम, फल भी तोड़ रहे हैं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमेशा भगवान का कीर्तन ही चलेगा हमेशा। वो इतना बस गया है मन में, नसों में, अंदर मन बुद्धि अहंकार को पार करके आत्मा में इतना घुस गया है वो कि बस हर टाइम हरे नाम ही चल रहा है। ऐसी स्थिति वैकुंठ में होती है। तो एक बार प्रभुपाद जी से और किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप इतना ज्ञान पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं वैकुंठ धाम के बारे में, तो हम वैकुंठ तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे इस भौतिक संसार की स्थिति में सुधार आ सके। रिपोर्टर्स ने पूछा भौतिक संसार की स्थिति में सुधार आ जाए, तो प्रभुपाद जी ने कहा टॉयलेट में कितना भी परफ्यूम डालो उसमें कोई सुधार नहीं आने वाला, थोड़ी देर के लिए खुशबू होती है, बाद में फिर बदबू ही रहती है। इस भौतिक संसार को कितना भी सुधारो ये सुधरने वाला नहीं है। तो इस संसार को सुधारने से बेहतर है कि हम किसको सुधारें, खुद को सुधारें, और अपने को सुधार कर भगवान के वैकुंठ गुणों का वर्णन और उसके श्रवण में लगें और श्रद्धा पूर्वक भगवान के उस धाम के बारे में जानें और उसको जानने का और प्रयास करें। तभी अपना शरीर त्यागने के बाद हो सकता है भगवान कृपा करें तो अपनी किसी निजी सेवा में हमको लगाएं, चाहे इस धाम में चाहे उस धाम में चाहे किसी भी धाम में। ठीक है, हरे कृष्णा। शिष्य राधा गोविंद भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पदे दपावन शैल प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। उससे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, सर साक्षी प्रभु जी मुझे क्षमा करिएगा, कुछ बोला हूँ मैंने गलत। तो
तो हमसे बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का, इतने सुंदर और सार गर्भित, सरल, समझ में आने वाली और मन बुद्धि अहंकार को पार करके हृदय तक जाने वाली कथा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। प्रभु जी पूरे NCR रीजन में प्रचार कर रहे हैं, वो लोगों को भक्त बना रहे हैं, तो हम सब भी इनकी कथाओं का लाभ लेते रहें। निवेदन है जल्दी जल्दी आते रहें, जल्दी आते नहीं हैं, तो पूरे हृदय से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की।